تفسير سورة الأنبياء. مکی سورت ہے، اس کی 112 آیات، 7 رکوع، الفاظ اور کلمات کی تعداد 1187، جبکہ حروف 5154 ہیں. سورت الانبیاء میں 17 انبیاء کرام کا ذکر مبارک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا. یہ موضوع کے لحاظ سے سورۃ کا عنوان نہیں ہے، بلکہ محض پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے. مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی توحید، رسالت، شان نبوت، اللہ کا ذکر اور فکر آخرت کی تعلیم دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ دین اسلام کو لے کر تشریف لائے ہیں، آپ دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی انبیاء کرام پہلے گزرے ہیں ان کا یہی مقصد تھا، یہی مشن تھا. تو اگر کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے، نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت جو ہے اس کو برباد کر بیٹھیں گے، کیونکہ پچھلی قوموں کے واقعات سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک قریش مکہ کو ڈراوا دیا گیا ہے، ان کو انذار کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ان کے محاسبے کا دن جو ہے وہ ان کے سر پر ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ساحر، کاہن اور وہی کو جو ہے وہ ادغاز و احلام کہہ رہے ہیں، خواب پریشان والے وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کو جھٹلایا، اس کا مذاق کیا، تو دوسری قوموں کی طرح اہل مکہ بھی برباد کر دیے جائیں گے. آپ غور کریں کہ سورۃ الانبیاء کا آغاز بڑا ہی مختلف ہے، بالکل منفرد ہے، بغیر کسی تمہید کے اسے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. فرمایا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے آغاز میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربا، تو قاف را با قرب ہے اور اقتربا بہت قریب آ گیا ہے. للناسی لوگوں کے لیے، یہاں پہ ویسے تو سارے ہی لوگ مراد ہیں، کیونکہ الناس جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور ہر دور کے لوگ مراد ہیں، خاص طور پر وہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں. لیکن اس زمانے میں چونکہ اہل مکہ تھے جو کہ مشرک تھے اور انکار کر رہے تھے، تو اس لیے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مشرکین مکہ مراد ہیں، لیکن ہر دور کے جو ہے وہ کفر اور شرک کرنے والے مراد ہیں. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. تو قرب قیامت سے مراد کیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. تو جو جو وقت گزر رہا ہے قیامت جو ہے وہ نزدیک ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کی جو قیامت ہے وہ اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہی انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مہلت عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہر انسان کی موت خود اس کے لیے ایک قیامت ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک معنی اس کے کیا ہیں کہ موت کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جائے گی، और दूसरे मानी क्या है कि कयामत आने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे वक्त पर मबूस किया गया हूं कि मैं और कयामत इन दो उंगलियों की तरह हैं। तो अब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वे कयामत को वाजे करने के लिए आपने जो है वो अपनी शहादत की उंगली और इसकी साथ वाली जो उंगली है इसको जो है वो खड़ा किया। और आप देखें कि दोनों जो उंगलियां हैं वो कितनी करीब हैं, उनके अंदर कितना कुर्ब पाया जाता है। तो ये बुखारी की रवायत है। तो अब आप देखें कि जिस तरह से ये उंगलियां जो हैं इनके दरमियान कोई चीज हायल नहीं है, तो इसी तरह जो है वो कयामत में और इंसान के अमल में जो है कोई चीज हायल नहीं है। जो ही इंसान मरता है उसके साथ मौत के साथ ही उसका हिसाब, उसकी जजा और सजा का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कब्र में ये सिलसिला जो है जजा और सजा का हल्के पैमाने पर होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो बड़े पैमाने पर होगा, वसी पैमाने पर होगा। तो यहाँ पे भी यही बात जो है फरमाई जा रही है, इक्तरब लिन्नासी हिसाबहुम, करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त। और ये एक धमकी नहीं बल्कि एक बयाने वाकई है, ये एक हकीकत है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है। और आगे लोगों की हालत बताई जा रही है, जो कुफर और शिर्क करने वाले हैं उनका हाल क्या है। आप देखेंगी कि आपके सामने कुफर करने वालों की 6 हालतें यहाँ पे सामने आएंगी। पहली हालत क्या है, वहुम फी गफलतिन, कि वो गफलत में हैं। अब आप देखें कि गफलत किस चीज से, जिंदगी की असल हकीकत से बेपरवाह है। और ये इंसान का बहुत बड़ा जुर्म है कि इंसान जो है वो गफलत में हो और भूल जाए कि मैं बंदा हूं और अल्लाह मेरा खालिक है, मुझे मखलूक बनकर रहना है, वो मेरा माबूद है तो मुझे उसकी बंदगी करनी है, वो मेरा हाकिम है तो मुझे उसका महकूम बनकर जीना है, और दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जो है एक खास मकसद के लिए पैदा किया है और मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या है कि गफलत की नींद में है, लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। दूसरी उनकी हालत क्या है, मोरेदून ऐन रादवाद, इसके मानी है कि मुंह फेर रहे हैं, एराज कर रहे हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। तो ये दूसरी हालत है। इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह के जगाने और झंझोड़ने पर उठते नहीं हैं, बल्कि जो भी नसीहत अल्लाह की तरफ से आती है तो उससे जो है वो मुंह मोड़े हुए हैं। उनकी गफलत यहां तक पहुंच चुकी है कि अल्लाह की नसीहत से एराज बरतते हैं। आयत नंबर 2 में फरमाया, मा याती मिन जिक्र मिन रब्बिहिम मुहदसिन, तो उनके पास जो ताजा नसीहत भी इनके रब की तरफ से आती है, इल्लस्तमाउहु, उसको बस सुन लेते हैं, जैसे उसे बातकल्लुफ सुनते हैं, सुनी अनसुनी करते हैं, वहुम यलअबून, और वो खेल में पड़े रहते हैं। तो आयत नंबर 2 में कुफर और शिर्क करने वालों की तीसरी हालत जो है वो बताई जा रही है। पहली बात क्या कि यहाँ पे कही कि मा यातीहिम मिन जिक्र मिन रब्बिहिम मुहदसिन, के मा यातीहिम नहीं आई इनके पास, मिन जिक्रिन कोई नसीहत, मिन रब्बिहिम इनके परवरदिगार की तरफ से, कि इनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती कोई नसीहत। मुहदसिन हा दाल सा, इसके मानी होते हैं कोई वाकया होना, जैसे हादसे के लिए भी ये लफ्ज आता है, एक नया वाकया जो रूनमा होता है उसके लिए हादसे का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके रब की तरफ से जो ताजा नसीहत, मुहदस इनके फिर मानी क्या है, ताजा नई, तो जो भी नई नई वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती, जो ताजा वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती, तो उसे वो क्या करते थे, इल्लस्तमाउहू, नहीं मगर वो उसको सुनते, यानी वो क्या करते थे कि उस नसीहत को बस ऐसे ही सरसरी तौर पर सुन लेते थे, बतकल्लुफ सुनते थे, वो उस नसीहत को सुनते थे और क्या करते थे, वहुम यलअबून, तीसरी हालत, और वो खेल में पड़े रहते थे। तो यहां पर जो है ये बात पता चलती है कि कुरान मजीद की कीमती नसीहतें, उसके कीमती मोती, गोहरे नायाब, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की नसीहत सुनकर अगर कोई इखलास से सुने तो इंसान की दुनिया और उसका दीन और उसकी आखिरत दोनों संवर जाती है। लेकिन जब कोई जो है वो गाफिल हो, खेल कूद में पड़ा रहे, खेल तमाशे में लगा रहे, तो फिर जो है वो ये नसीहत उसको कुछ फायदा नहीं देती। और आप भी गौर करें कि अल्लाह की तरफ से जो कुरान हमारे पास मौजूद है इस वक्त, अल्लाह का जो खत मेरे नाम है, आपके नाम है, तो इसमें आपका जो है वो क्या हाल है, आपका क्या किरदार है। अब आप देखें कि आपको फोन आता है और फोन पर आपके करीबी लोगों का पैगाम होता है और फोन पर टेक्स्ट मैसेज होते हैं, सेल फोन होता है, मैसेज मशीन में फोन रिकॉर्ड होते हैं, तो आप जो ही आपको फुर्सत मिलती है या बाहर से आप घर आती हैं, फौरन आप मैसेज सुनती हैं। तो जो मैसेज जितना इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है और जितने प्यारे का होता है, बहुत करीबी का होता है, आप फौरन उसका रिस्पॉन्स करती हैं, इसी तरह ईमेल के जरिए। तो अब आप देखें कि कुरान जो है ये मेरे और आपके नाम अल्लाह का मैसेज है, पैगाम है, खत है। तो इस खत की तरफ से लोग कहां पर हैं? गफलत में पड़े हुए हैं। लोग क्या कर रहे हैं? एराज कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछें, कहीं मैं तो कुरान की तरफ से गाफिल नहीं हूं? अल्लाह की आयात तो मेरे सामने है, लेकिन मैं जो हूं इनकी मौजूदगी में जो है वो इनसे फायदा नहीं उठाती। एराज बरतना, इस पर अमल ना करना। और तीसरी बात क्या है कि सुनते हैं तो बस सुनी अनसुनी कर दी, जैसे बच्चे को वालदैन आवाज देते हैं और बच्चा जो है सुनना होता है, लेकिन ऐसे लग रहा होता है कि जैसे अनसुनी कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको उसके कोई फायदे की चीज या कोई गेम या कोई खेल, कोई पिज्जा, कोई घूमना, कोई आउटिंग, कोई ऐसी वैसी बात कहें, तो फौरन जंप करके आपकी तरफ आते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि पहले भी ये सुन रहे थे लेकिन सुनी अनसुनी कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? खेल कूद में पड़े रहते हैं। तो तीसरी हालत है कि कुरान सुनकर भी ये लोग जो हैं ये मस्ती में रहते हैं, ये शरारत में रहते हैं और गफलत और लाउबालीपन का मुजाहरा करते हैं। कुरान को संजीदगी से सुनते ही नहीं कि इस पर गौर करें और इसके मुताबिक अमल करें। इनकी चौथी हालत आयत नंबर 3 में बताई गई, लाहियतन कुलूबहुम। लाहियतन जो है ये लाम हा वाओ इसका रूट है, तो लाहियतन कुलूबहुम, लाहियतन जो है इसका रूट है लाम हा वो, और इसके मानी है ऐसी चीज, ऐसा काम, ऐसा अमल जो इंसान को अहम तर काम से जो है वो गाफिल रखे। तो लहव का लफ्ज जो है वो लयानी बातें और काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बातें और ऐसे काम जो कि गैर अहम हो, जो जरूरी ना हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि लाहियतन कुलूबहुम, कि इनके दिल जो हैं ये दूसरी ही फिक्रों में मुनहमिक हैं। लाहियतन के मानी है गफलत में है, लाहवल हदीस में पड़े हुए हैं, लाहवल अमल में पड़े हुए हैं, कुलूबहुम इनके दिल। तो लाहियतन कुलूबहुम के मानी ये है दरअसल कि दिल का असल काम होता है तफक्कुर करना, तदब्बुर करना, लेकिन इनका हाल क्या है कि इनके दिल अपनी ही दिलचस्पियों में ऐसे खोए हुए हैं कि संजीदा से संजीदा बात और बड़ी से बड़ी हकीकत को ये मजाक में उड़ा देते हैं। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह की आयात को सुनने के लिए तवज्जो ही नहीं देते, और अगर अल्लाह की आयात को सुनते भी हैं तो जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, सुनी अनसुनी कर देते हैं, खेलते रहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहते हैं। अच्छा आप देखिए कि किसी भी पैगाम को वसूल करने के लिए क्या होता है कि इंसान जो है अपने दिल में उसका जो है वो शौक रखता है, तफक्कुर करता है, तदब्बुर करता है, दिमाग से भी सोचता है और दिल से भी जो है वो सोचता है, संजीदा से संजीदा बात जो है, बड़ी से बड़ी जो हकीकत है तो उसको समझने के लिए क्या करना जरूरी है, दिल और दिमाग की यकसुई। अब आप देखें कि आप फोन पर होती हैं, आप बात कर रही होती हैं, तो आप बच्चों से क्या कहती हैं, आप मेरे पास से चले जाएं, आप शोर नहीं करें, आप सब लोग खामोश हो जाएं, मैं बहुत जरूरी बात जो है वो सुन रही हूं, है ना। तो यहां पर चौथी बात ये बताई जा रही है कि उनके दिल जो है वो गाफिल हैं, लहव के अंदर हैं, और लाम हा वो जो है इसके मानी है कि वो लोग गैर जरूरी चीजें, गैर जरूरी बातें जो है उसमें मसरूफ रहते हैं। जैसे कुरान की मौजूदगी में वो मूवीज, फिल्में, चैटिंग, नावल, अफसाने, लायानी गुफ्तगु, फजूल बातें जो है उसमें लगे रहते हैं। आप साथ साथ अपना मुहासबा करें, ये सोच कर आगे ना गुजर जाएं कि अहले मक्का से कहा जा रहा है। जरूर अपने आप से पूछें, अपने सीने के अंदर जो दिल है, जो जमीर है, उसको टटोलें, और आप देखें कि आपका कुरान के साथ जो है वो कैसा ताल्लुक है। आप क्या करती हैं, आप जो है वो कुरान की मौजूदगी में आप जो है वो इधर उधर वक्त जाया करती हैं, या जितना भी वक्त जो है उसकी ऑडिटिंग करके, उस वक्त को सेव करके आप कुरान के साथ जो है वो मसरूफ रहती हैं। इमाम उज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को इल्म की बरकत से महरूम करना चाहता है तो इसकी जबान पर उलझाने वाली बातें जारी कर देता है। और जबान पर कौन सी बात आती है, जो इंसान के दिल के अंदर होती है, जो इंसान के दिमाग के अंदर होती है। और आप देखें कि पांचवी हालत क्या है, वह असर नजवा, वह असर सीन रा रा सिर खामोशी चुपके चुपके, वह असर और चुपके चुपके नजवा सरगोशी की। तो ये जालिम जो है चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं, तो नजवा जो है इसके मानी है सरगोशी करना। तो वो लोग क्या करते थे, चुपके चुपके क्या बातें करते थे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब उनको जो है वो हदीस सुनाते, उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते, तो ये लोग जो है क्या करते कि आपस में बातें करते, आपस में सरगोशियां करते, और एक दूसरे के दिलों में वसवसे पैदा करते। जो लोग जो है वो दीन की तरफ मुतवज्जो होते तो उनको दीन से भटकाने की, हटाने की कोशिश करते। तो इनकी, इनके कान, इनकी जबान, इनका दिल, इनका दिमाग जो है वो नसीहत के लिए तैयार ही नहीं है। मजाक, खेल कूद, बस उसी में जो है ये लोग लगे हुए हैं। वह असर नजवा, और ये सरगोशियां करते हैं, मजाक करते हैं, ये बातें करते हैं। तो बिल्कुल कुरान मजीद को तवज्जो नहीं देते, बल्कि कुरान मजीद को हंसी और खेल समझते हैं। अब आप देखिए कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म में पुख्ता कार वो होता है जिसकी कसम सच निकले, जबान सच्ची हो, कल्ब में इस्तकामत हो, और वो अपने पेट और शर्मगाह को पाकीजा रखे। तो जिसकी हर चीज जो है वो सही होती है। लेकिन इनका हाल क्या है कि ये लोग जो हैं ये फजूलियात के अंदर जो है ये पड़े रहते हैं, और ये इनकी कुफ्र करने वालों की, शिर्क करने वालों की पांचवी हालत जो है ये हमारे सामने रखी गई। अल्लज़ीना ज़लमू, ये कौन है, ये हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। अल्लज़ीना इसम मौसूल है, ये दो आयात को, दो जुमलों को, दो बातों को आपस में मिलाता है। तो ये जिनके लिए अन्नास पीछे कहा गया ना आयत नंबर एक में, और अब इन्हीं के बारे में जो है आप देखें कि आयत नंबर एक में हुम भी कहा गया, फिर इनके लिए मोरेदून कहा गया, फिर इनके लिए जो है वो, फिर दोबारा जो है वो हुमियल अबून, फिर लाहियतन कुलूबुहुम वसरु नजवा, इनकी सारी हालतें बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अल्लज़ीना ज़लमू। तो ये कौन है, ये जालिम लोग हैं, ये हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, और जुल्म से मुराद क्या है, कुफर किया, शिर्क किया। हल हाजा, फिर इसके बाद जो है ये आपस में जो सरगोशियां करते हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पे सरगोशी को नकल किया गया है कि हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, कहते हैं कि ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है। अफतातून सेहरा, तो ये शख्स जो कि तुम ही जैसा एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई बड़ा हुआ नहीं है, तुम्हारे जैसा एक इंसान। अफतातूना, क्या पस क्यों आते हो, क्या पस तातूना तुम आते हो, असेहरा जादू इसके में। तो अफतातूना तो वो अपने जो दूसरे लोग थे जिनसे सरगोशी करते थे, जिनके कानों में जो है वो जुमले डालते थे, जिनके लिए वसवसा अंदाजी करते थे, कानाफूसी करते थे, कहते थे अफतातूना क्या तुम आते हो, असेहरा जादू में। तो कुरान की आयात और कुरान का जो पैगाम था जो रसूल अल्लाह देते थे उसको वो जादू कह रहे हैं कि क्या तुम जादू में आ रहे हो, जो रसूल अल्लाह दावत पेश कर रहे हैं, क्या तुम इसके जादू में आते जा रहे हो, फंस रहे हो। वह अन तुम तुबसिरून, वह अन तुम और हो तुम तुबसिरून देखते, हालांकि तुम देख रहे हो। तो अन तुम तुबसिरून इनकी छठी हालत है, और यहाँ पे ये छठी हालत जो है ये इनके एहसास बर्तरी को जाहिर करती है। तो वो अपनी लोगों के दिलों में एहसास बर्तरी जो थे उभारते थे कि तुम कोई भोले भाले और सादा लोग नहीं हो, तुम कोई भोले भाले अनपढ़ किस्म के लोग नहीं हो, और तुम तो बड़े अकलमंद हो, तुम्हें तो खूब सूझबूझ है, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें तो सब पता है। फिर जानते बूझते देखते सुनते तुम इस शख्स के जादू में क्यों फंस रहे हो। तो ये क्या है, ये जो भी दावत पेश कर रहे हैं बस ये जादूगरी है, और ये जो है ये जोरे खिताबत की साहिरी है। इस सिलसिले में हमें जो है वो सीरत से भी मिसाल मिलती है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहम्मद बिन इसहाक ने जो नकल की है, लिखी है, वो कहते हैं कि एक दफा उतबा बिन रबिया जो है, उतबा बिन रबिया उसने कुरैश के सरदारों से कहा कि अगर आप लोग पसंद करें तो मैं जाकर मोहम्मद से मिलूं और उसे समझाने की कोशिश करूं। ये हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद का वाकया है, क्योंकि जब हजरत हमजा भी जो है मुसलमान हो गए तो अहले मक्का जो थे बहुत परेशान होने लगे, खास तौर पर जो उनके सरदार थे वो सख्त परेशान थे, कहने लगे कि ये दिन ब दिन कुव्वत पकड़ते जा रहे हैं। उतबा बिन रबिया जो है उसकी कुनियत थी अबुल वलीद, लोगों ने कहा अबुल वलीद हमें तुम पर पूरा इत्मीनान है, जरूर जाओ और इससे बात करो। वो रसूल अल्लाह के पास पहुंचा और कहने लगा कि भतीजे हमारे यहाँ तुमको जो इज्जत हासिल थी तुम खुद जानते हो, नसब में भी तुम एक शरीफ तरीन घराने के फर्द हो, तुम अपनी कौम पर ये क्या मुसीबत ले आए कि तुमने जमात में तफरका डाला, सारी कौम को बेवकूफ ठहराया, इसके दीन और इसके माबूदों की बुराई की, बाप दादा जो मर चुके हैं इन सबको तुमने गुमराह और काफिर बनाया। भतीजे अब बताओ तुम्हारा इन बातों से क्या मकसद है, अगर दुनिया में बड़ाई चाहते हो तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम सबसे ज्यादा मालदार बन जाओ, सरदारी चाहते हो तो हम तुम्हें सरदार बना लेते हैं, अगर तुम बादशाह ही चाहते हो तो हम बादशाह बना देते हैं। चौथी बात कही कि अगर तुम्हें बीमारी लग गई है या सोते जागते में कुछ नजर आने लगता है तो तुम ऐसी बातें करते हो तो हम तुम्हारा बेहतरीन जो है वो हकीमों से तबीबों से इलाज करवा देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने इनकी ये सारी बातें सुनी और कहा कि अबुल वलीद जो कुछ आपने कहना था कह चुके, और उसने कहा कि बस इतना ही कहना था, तो आपने जवाब में सूरत हा मीम सजदा की आयात तिलावत की, और उतबा जो था उतबा बिन रबिया वो तिलावत सुनता रहा, और उसके बाद जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबुल वलीद जो कुछ मुझे कहना था वो आपने सुन लिया, अब आप जाने और आपका काम। तो उतबा जब वापस गया अपने मक्का के सरदारों के पास तो लोगों ने कहा खुदा की कसम अबुल वलीद का चेहरा बदला हुआ है, ये वो सूरत नहीं है जिसे ये लेकर गया था, और पूछा कि अबुल वलीद तुम क्या करके आए हो। तो उसने कहा खुदा की कसम आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि इससे पहले कभी ना सुना था, वल्लाह ये शेर नहीं है ना सहर है और ना कहानत, और ए गुरोहे कुरैश मेरी बात मानो और इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो, इसकी बातें जो मैंने सुनी है रंग ला कर रहेंगी, अगर अरब इस पर गालिब आ गए तो अपने भाई का खून तुम्हारी गर्दन पर ना होगा दूसरों पर होगा, और अगर ये अरब पर गालिब आ गया तो इसकी हकूमत तुम्हारी हकूमत होगी और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत। لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا. اس نے کہا میری رائے یہ ہے, اب تم جانو اور تمہارا کام. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے اور قرآن کو جادو کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے. اب آپ دیکھیں کہ اہل مکہ کی یہ باتیں کتنی دکھ دینے والی تھی, کتنی تکلیف دینے والی تھی, اور ان کی یہ جو چھ حالتیں ہیں جو کفر اور شرک کرنے والوں کی, یہ آپ کے سامنے یہاں پر قرآن میں ہیں سورۃ الانبیاء کی پہلی تین آیتوں میں. اور آپ ذرا جائزہ لیں آج کے مسلمانوں کا, اپنا جائزہ لیں کہ آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے, کہ یہ جو چھ اوصاف ہیں جو کفر کرنے والوں کے اس زمانے میں پائے جاتے تھے, کہیں آج تو نہیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے, کہیں آپ کے اندر تو نہیں ہے؟ ضرور جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر چار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کیا جواب دیا, بڑا ہی زبردست انداز ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی بھی بات بولنے کی بجائے, کوئی بھی بات کہنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. کتنی خوبصورت بات ہے, قال ربی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب, یعلم, جانتا ہے, القولہ, بات کو, کہ میرا رب جو ہے ہر اس بات کو جانتا ہے جو فی السماء والارض, جو آسمان اور زمین میں کی جائے, وہو السمیع العلیم, اور وہ سمیع اور علیم ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ تم جو جھوٹ بکتے ہو اللہ اسے بھی سن رہا ہے, اور میری جو سچائی ہے میں جو وہی پیش کر رہا ہوں اللہ اسے بھی سنتا ہے. تو تم جو حرکتیں کر رہے ہو, جو تمہاری یہ جو چھ حال ہیں, اللہ ان کو بھی جانتا ہے, اور میں کس طرح سے دعوت کو پیش کر رہا ہوں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو میرا رب جو ہے, میں نے اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیا جو آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے. تو پیاری بہنوں, یہاں پہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو یہ ہے ایک دایانہ کردار, کہ ان کی ان باتوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی کہنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ تمہارے راز, تمہاری سازشیں, تمہارا کفر, تمہارا شرک, تمہارا مذاق اڑانا, تمہاری غفلت جو ہے, یہ سب اللہ کے علم میں ہے, اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے اور وہی تم سے بدلہ لے گا, اور میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں مجھے اللہ ہی اس کی جو ہے وہ جزا دے گا. آیت نمبر پانچ, بل قالو, بلکہ وہ کہتے ہیں ادغاسو احلام, بل افتراہو, بل ہوا شاعر, فلیاتینا بآیتین کما ارسل الاولون, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندا خواب ہے, بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے, بل ہوا شاعر, بلکہ یہ شخص شاعر ہے, فلیاتینا, بس لائے, بآیتین, کوئی نشانی, کما, جس طرح, ارسل الاولون, پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے. اب یہاں پر جو ہے اہل مکہ جو ہے ان کا انکار کرنے والوں کا جواب جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے کہ سرگوشی کرنے والوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ جادو ہے, بلکہ انہوں نے دوسری بات یہ کہی قرآن کے بارے میں, وحی کے بارے میں, کہ یہ پراگندہ خواب ہے. ادغاس کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے دعات غین سا, اور اس کے معنی ہے گھاس کی اس مٹھی کو کہتے ہیں, وہ مٹھی بھر گھاس جس میں خشک اور تر جو ہے وہ ملی بھی ہو. اب آپ دیکھیں جو گھاس ہوتی ہے اس میں گیلی بھی ہوتی ہے اور خشک بھی ہوتی ہے, تو دونوں کا مجموعہ جو ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ دواد غین سا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور یہی سے یہ لفظ محاورتاً استعمال ہونے لگا ایسے خوابوں کے لیے جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بالکل خالی ہوں اور الجھے ہوئے ہوں. کیونکہ احلام جو ہے یہ ہا لام میم سے ہے, روٹ ہے اس کا ہا لام میم, اور جمع ہے احلام, اور یہ خوابوں کو کہتے ہیں. تو ادغاسو, پریشان کن, پراگندہ, ملے جلے, گڈمٹ, گڈمٹ جو خواب ہوتے ہیں. जैसे आपने पीछे सूरत यूसुफ में भी ये लफ्ज पढ़ा था कि जो बादशाह का ख्वाब था वो साथ गाय वाला, तो उसके जो मशीर थे और बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा था ये परेशान कौन ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत बताई थी। तो अदगासु अहलाम का लफ्ज डरावने ख्वाब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ख्वाब को शक से बयान करना उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देखें कि कुरान के बारे में उन्होंने दूसरी बात यह कही कि ये परागंदा ख्वाबों का मजमुआ है, ये जो है बस कुरान मजीद जो है ये ऐसी बातें इसके अंदर हैं जो समझ में नहीं आने वाली, जिसकी कोई भी हकीकत नहीं है। तो आप देखें कि वो कुरान को सिर्फ सहर नहीं कह रहे, उससे भी आगे बढ़कर उसको ख्वाबे परेशान से ताबीर कर रहे हैं। तीसरी बात, बलिफ तराहू, कहते हैं कि इसने इसको घड़ लिया है, तो झूठा कह रहे हैं, कुरान झूठ है और रसूल अल्लाह को झूठा कह रहे हैं। चौथी बात, बल हुआ शायर, बल्कि ये शख्स शायर है। अब आप देखेंगे कुरान जो है उसको शायरी कहना और रसूल अल्लाह को जो है वो शायर कहना, तो इसका क्या मतलब है? अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि शायर का जो कलाम था वो बड़ा असर रखता था, और जो है वो जो शेर होता था उसकी हैबत से, उसके जलाल से लोग बड़े मरूब होते थे, उसका बड़ा रोब दाब जो था वो कायम होता था। तो अब अल्लाह के कलाम को ये कह रहे हैं कि बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश किया कि ये शख्स जो है वो शायर है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाकया है तुफैल बिन अमर दोसी का, ये भी हमें सीरत की किताबों में मिलता है, और वो कबीला दौस का एक शायर था तुफैल। वो किसी काम से मक्का गया, वहां पहुंचते कुरैश के चंद लोगों ने जो शायर था तुफैल उसको घेर लिया, रसूल अल्लाह के खिलाफ खूब कान भरे, यहां तक कि रसूल अल्लाह से तुफैल को सख्त बदगुमान कर लिया। तुफैल कहता है कि मैंने तय कर लिया कि आपसे बचकर ही निकलूंगा, दूसरे रोज मैंने हरम में हाजिरी दी तो आप काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, मेरे कानों में चंद जुमले जो पड़े तो मैंने महसूस किया कि ये तो कोई बड़ा अच्छा कलाम है, मैंने अपने दिल में कहा कि मैं शायर हूँ, जवान मर्द हूँ, अकल रखता हूँ, कोई बच्चा नहीं कि सही और गलत में तमीज ना कर सकूं, आखिर क्यों ना उस शख्स से मिलकर मालूम करूं कि ये क्या कहता है। चुनाचे वो रसूल अल्लाह के पास गया नमाज से फारिग होकर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो, चुनाचे वो शख्स जो है वो जब वहां पर गया तो रसूल अल्लाह नमाज से फारिग होकर जा रहे थे, तो तुफैल जो है ये भी आपके पीछे पीछे चला और आपके मकान पर पहुंचकर कहा कि आपकी कौम ने आपके मुतल्लिक तो मुझे ये कुछ कहा है, और मैं आपसे इतना बदगुमान हो गया था कि मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली थी ताकि आपकी आवाज सुन भी ना पाऊं, लेकिन अभी जो चंद कलमे आपने सुनाए हैं वो मुझे अच्छे मालूम हुए, मुझे जरा तफसील बताएं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान का एक हिस्सा सुनाया, इससे वो इतना मुतासिर हुआ कि उसी वक्त ईमान ले आया, फिर अपनी बाप अपनी बीवी को भी मुसलमान किया, वापस जाकर अपने कबीले में तबलीग करता रहा, यहां तक कि गजवाए खंदक के जमाने तक पहुंचते पहुंचते इसके कबीले के 70-80 घराने मुसलमान हो गए, 70-80 लोग नहीं, 70-80 घराने मुसलमान हो गए। तो अहले मक्का क्या करते थे, प्रोपेगंडा करते थे, और आपको पता है कि मौजूदा दौर भी प्रोपेगंडे का दौर है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो खूब जो है वो बातें की जाती हैं और लोगों को इस्लाम से बदजन किया जाता है, तो उस जमाने में भी ये हो रहा था। तो वो क्या कहते हैं कि कुरान जो है ये सिर्फ सहर ही नहीं बल्कि परागंदा ख्वाब है, बल्कि ये घड़ा हुआ है और पेश करने वाले शायर हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज बिल्ला, और कहते थे कि वरना यानी अगर ये हमारी बातें झूठी हैं तो ये लाए कोई निशानी, फल या तीना बे आयतिन, अता का मतलब होता है ना आना, लेकिन बा आ जाए तो लाना, बस लाए ये कोई मोजा, कमा उर्सिल अल अव्वलून, जिस तरह पुराने जमाने के रसूल जो थे वो मोजों के साथ भेजे गए थे, जैसे समूद के लिए ऊंटनी थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो थी असा और यद बेजा थी, तो पहले पैगम्बरों के पास तो मोजे थे तो रसूल अल्लाह के पास तो कोई मोजा नहीं था, तो अब अहले मक्का जो है इसको झुटला रहे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मा आमनत कबलहुम मिन करियतिन अहलकनाहा अफहुम युमिनून, हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी नहीं जिसे हमने हिला किया हो, जो ईमान ना लाई हो, अब क्या ये लोग ईमान लाएंगे। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो पहली बस्तियां हैं उनका हाल जो है वो बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा ये तजुर्बा और मुशाहिदा है, मेरी ये सुन्नत है कि जो पिछली जो कौमें थी उन्होंने जब मोजे मांगे और उनके मुंह मांगे मोजे जो थे उनकी कौम को दिए गए, फिर भी उन्होंने जो है वो इनकार ही किया। तो जो लोग मोजे मांगने के बाद इनकार करते हैं तो अल्लाह का ये कानून है कि दुनिया ही में अजाब नाजिल करके उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अब यहां पर यही बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मा आमनत, नहीं ईमान लाई थी, कबलाहुम, इनसे पहले, मिन करियतिन, कोई बस्ती। तो इनसे पहले जिन कौमों को मोजे दिए गए थे तो वो कौमें मोजे देखने के बाद ईमान नहीं लाई थी, तो हमने क्या किया, अहलक नाहा, हमने उनको हिलाक कर दिया, हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अफाहुम योमिनून, क्या बस अब ये लोग ईमान लाएंगे? तो अफाहुम योमिनून की में इसमें इशारा है कि क्या मुंह मांगे मोजे को देखकर क्या अहले मक्का ईमान ले आएंगे? तो क्या अगर ये इसका वादा दें कि इनका मुंह मांगा मोजा पूरा कर दिया जाए तो ये ईमान ले आएंगे, तो फिर ऐसा किया जा सकता है? तो वो तो ईमान नहीं लाए थे और हिलाक हो गए, तो क्या आप ये भी अपनी हलाकत चाहते हैं? फिर इसके बाद आयत नंबर 7 जो है इसमें फरमाया, वमा अरसलना कबला का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था। नूह ही इलेहिम, हम वही भेजते थे इनकी तरफ, यानी हमने तुमसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे वो कौन थे? रिजालन, रजुल वाहिद है और रिजाल इसकी जमा है, तो तुमसे पहले तमाम जो रसूल थे वो सब मर्द थे, वो सब इंसान थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई फरिश्ता हो, क्योंकि अहले मक्का को एक एतराज ये था कि प्यारे रसूल जो हैं वो हम ही जैसे एक इंसान है ना। आपने जो है ये आयत नंबर 3 में पढ़ा, वो क्या कहते थे, हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, कि ये तुम ही जैसा एक बशर है। तो यहाँ पे उसका जवाब दिया जा रहा है कि जितने भी हमने रसूल भेजे वो सब इंसान थे। फस अलू, बस तुम पूछ लो, बस तुम सवाल कर लो। आहल जिक्री, आहल जिक्र से मुराद जो है ये अहले इल्म है, अहले किताब जो साबिका आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। कहा जा रहा है कि तुम्हें नहीं पता तो अहले किताब से पूछ लो, क्योंकि उनके पास जो है वो पिछली किताबों का इल्म है। और तुम्हारा हाल क्या है, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। आयत नंबर 8 सूरत अलंबिया, वमा जालनाहुम जसदन, उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया, ला या कुलून तामा, ला या कुलून तामा, कि वो खाते ना हो, वमा कानू खालिदीन, और ना वो सदा जीने वाले थे। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि वो रसूल जो थे वो सारे के सारे रसूल जो थे वो इंसान थे, और खास बात क्या थी कि वो लोग खाते थे और उनके पास जिस्म था, आम जैसे इंसान होते हैं कि खाना पीना उनका जो है वो उनकी बशरी जरूरत होती है। तो यहां पर भी यही बात जो है वो बताई जा रही है कि वो लोग जो थे वो खाते थे, इंसान थे, और उनको हमेशगी हासिल नहीं थी, वो सदा जीने वाले नहीं थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने उन पर मौत को नाजिल कर दिया और फिर वो लोग जो थे वो फौत हो गए। तो इस आयत में ये कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अगर आपकी वफात हो जाए तो रसूलुल्लाह की नबुवत पर इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जितने रसूल थे जैसे वैसे वो थे, वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि हमने उन रसूलों को कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हों और ना वो सदा जीने वाले थे। तो क्या मतलब है, उनका जिस्म आम इंसानों जैसा जिस्म था, वो खाते भी थे और उनको हमेशगी हासिल नहीं थी, उन्हें मौत आ गई। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही एक आम इंसान है। फिर आप देखें कि आयत नंबर 9 में जो है ये फरमाया कि रसूलों को जो झुठलाते हैं तो उन पर तो अल्लाह का अजाब आया करता है, सुम्मा सदक ना हूं, फिर हमने जो है वो सच साबित किया, फिर हमने सच्चा करके दिखाया इनको, अलवादू वादा, तो फिर हमने जो है वो इनको अपना वादा जो था वो सच करके दिखाया। क्या अल्लाह ताला ने अपना वादा जो था सच करके दिखाया? तो अल्लाह ताला ने उनसे ये वादा किया था कि अगर कौमों ने रसूलों को झुठलाया, अगर कौमों ने जो है वो अल्लाह के रसूलों के पैगाम को झुठलाया, किताबों को झुठलाया, मौजात को झुठलाया, तो अल्लाह ताला मुकज्जबीन को अजाब से हिलाक कर देंगे और मोमिनीन को बचाएंगे। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए, कि जिन कौमों ने अल्लाह को झुठलाया तो वो कौमें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, जिन कौमों ने मौजात को झुठलाया तो वो कौमें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे वाद से मुराद जो है कौन सा वादा है कि जो कौमें रसूलों को झुठलाती हैं तो वो जो है वो हिलाक कर दी जाती हैं। एक तो अजाब दुनिया में आता है रसूल को झुठलाने के नतीजे में, और दूसरा अजाब जो है वो आखिरत में आकर रहेगा। फन जई ना हूं, बस हमने उनको जो है वो निजात दे दी। तो जो ईमान लाने वाले थे अल्लाह ने उनको बचा लिया। वमन नशा, और जिसको चाह, वह अहलक नल मुसरिफीन, और हिलाक कर दिया हमने हद से गुजर जाने वालों को। तो अल्लाह ताला ने जिसको चाहा, जो ईमान लाने वाले थे उनको तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, जिस जिसको अल्लाह ने चाहा उन्हें अल्लाह ने बचा लिया, और हद से गुजर जाने वालों को हिलाक कर दिया। तो हद से गुजरने वाले कौन थे? मौजों का इनकार करने वाले, रसूलों की मुखालफत करने वाले। तो वो कौमें जितनी वो तबाहो बर्बाद हो गई। आयत नंबर 10 सूरत अल-अंबिया, लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीही जिक्रुकुम, लोगो हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। अब यहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसी किताब जो है वो नाजिल की है कि जिसमें तुम्हारा जिक्र है। आपको पता है ना कि कुरान मजीद जो है वो इसका जो मौजू है वो इंसान है, कि इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने ये किताब लिखी है, और इस किताब में ये बात बताई गई है कि जो है वो कौन से लोग हैं जो के कामयाब होंगे और कौन से लोग हैं जो के नाकाम होंगे। तो यहाँ पर यही बात जो है वो कही जा रही है कि लोगों हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, अफला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं हो? तो अहले मक्का क्या कह रहे थे कुरान को? शायरी, जादूगरी, परागंदा ख्वाब, मनगढ़ंत अफसाने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिर कुरान में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती? इसमें तो तुम्हारे ही बारे में बातें हैं कि तुम क्या करो कि तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओ और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? आयत नंबर 11 से लेकर 15 तक इसमें जो है वो उस बस्ती वालों का हाल बयान किया गया है कि जब उन लोगों ने अल्लाह की आयत को झुठलाया और कुफर की राह इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उन बस्ती वालों को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो दूसरी जो कौमें हैं उनसे जो है वो पिटवाया। अब यहां पे देखें वह कम, आयत नंबर 11 सूरत अल-अंबिया, वह कम, और कम जो है ये तकसीर के लिए है, कसरत के लिए, सीगाए तकसीर, कितनी वह कम और कितनी, कसम ना, आफ स्वाद मीम जो है ये रूट है, और इसके मानी होते हैं पीस डालना, तोड़ मड़ोड़ कर, रेजा रेजा करके तबाहो बर्बाद कर देना। जैसे किसी चीज को स्मैश नहीं करते हैं आप, तो तोड़ फोड़ कर रख देना या पीस कर रख देना। तो यहां पे कहा जा रहा है कि कितनी बस्तियां थी, वकम कसम ना मिन करियतिन, और कितनी कितनी ही बस्तियां थी कम, और कितनी पसमना हिलाक की हमने, उनको पीस कर रखा हमने, तोड़ मड़ोड़ दिया, रेजा रेजा कर दिया, मिन करियत, इन बस्तियों में से। अब यहाँ पे जो है वो करिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और कुरा इसकी जमा है, लेकिन करिया के साथ ही कम आ गया ना, तो इसलिए मानी क्या है कि बहुत सी ऐसी बस्तियां थी, कानत जालिमतन, जो जुल्म करने वाली थी। تو جتنی بھی ظلم کرنے والی بستیاں تھیں ان کو تباہ کر دیا. تو ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کفر کرنا, شرک کرنا. تو کفر اور شرک کرنے والی جو قومیں ہیں ان کو اللہ تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے. من شاءنا بعدہا قومن آخرین, اور ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا. وانشانا اس کے معنی ہے اور پیدا کیے ہم نے. من قریتن ان بستیوں کے بعد جو ہے, وانشانا بعدہا اور پیدا کیے ہم نے ان کے بعد قومن آخرین دوسرے لوگ. تو ہم نے ان قوموں کو تو تباہ کیا ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے, اور جو ہے وہ دوسری قوموں کو جو ہے وہ پیدا کیا. فلما احسوا باسنا, فرمایا کہ پھر جب ان لوگوں نے محسوس کیا عذاب ہمارا, جب ان لوگوں کو ہمارا عذاب جو ہے محسوس ہوا, اور اس کے معنی ہے کہ عذاب الہی سر پر آ گیا, انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری شامت آ گئی ہے. اذا ہم منہا یرکدون, تو اس وقت وہ لوگ لگے بھاگنے, تو اس وقت وہ لوگ وہاں سے لگے بھاگنے. یرکدون جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے, اس کو آپ سرکل کر لیں اور سمجھ لیں. اس کا روٹ ہے را کاف دواد, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر جب اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتا ہے, تو اس کے پھر معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایڑی چلانا, سرپٹ دوڑنا. تو یہاں سے یہ لفظ جو ہے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا, کیونکہ آدمی جب گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتا ہے, تو معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ دوڑنا چاہتا ہے. تو عذاب کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے لگے, انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہیں یعنی اللہ کے عذاب سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں, ہم بھاگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا ترکدو, نہیں بھاگو, نہیں سر پر دوڑو, ورجعو اور لوٹ جاؤ, الا ما اترفتم فیہ و مساکنکم لعلکم تسألون. تو کہاں لوٹ کے جاؤ؟ الا ما اترفتم, اترفتم جو ہے اس کا روٹ ہے تارافا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں ناز و نعمت, ناز و نعمت کے, دولت کے, عیش و عشرت کے. مترفین امیر لوگوں کو کہتے ہیں جو دولت مند لوگ ہیں. تو کہا کہ تم لوگ جو ہے عیش و عشرت کے سامانوں کی طرف اب لوٹو, کہ وہ عیش و عشرت جس کی وجہ سے تم مجھے بھول گئے اور تم جو تھے وہ غفلت میں تھے, اور تم جو ہے وہ لاہیتن قلوبہم اثر النجوہ اور وہم یلعبون فی غفلت موردون, جو پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا. تو جس کی وجہ سے یعنی مال و دولت, عیش و عشرت, اس کی وجہ سے تم مجھے بھول گئے, تو اب جاؤ اسی مال و دولت کی طرف, اب جاؤ اس میں جا کر پناہ لو, اب جاؤ وہ تمہاری جو ہے کچھ مدد کریں. وہ مساکنکم, مساکن جو ہے اس کے معنی ہے گھر کے, مسکن ہوتا ہے نا جہاں انسان ٹھہرتا ہے, سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. تو مساکن جو ہے تمہارے مکان, اور اپنے مکانوں میں مراد کیا ہے کہ اپنے ان محلات میں, اپنے ان گھروں میں جو ہے اب جاؤ جس میں تم چین کی بانسری بجاتے تھے اور تم مجھے بھول جاتے تھے, تم نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا تھا. لعلکم تسألون, شاید کہ تم سے جو ہے وہ پوچھا جائے, شاید کہ تم سے پوچھا جائے. اس کے معنی ہے کہ یعنی اب اپنی محفلیں جا کر جماؤ, وہ خادم, وہ کونسلے, وہ محلات, شاید اب تم سے کوئی مشورہ کرے کہ اب کیا کیا جائے نا. تو یہاں پہ دراصل جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ شاید تم سے جو ہے وہ پوچھا جائے. معنی کیا ہے کہ وہ مکان, وہ سامان, وہ نوکر چاکر, وہ دولت جس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا, شاید کہ اب تم سے جو ہے کوئی پوچھے کہ تم پر کیا گزری, تمہارا کیا حال ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی, بے شک ہم خطا کار تھے, ہم نے ہی کفر کیا تھا, ہم نے ہی شرک کیا تھا. فما زالت تلک دعواہم, فما زالت تلک دعواہم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار. تو ویسے تو جو ہے وہ زالت زا و لام زوال سے ہے نا, किसी चीज पर जो है वो जवाल आ जाए और वो चीज खत्म हो जाए, और जब इसके साथ जो है ये आ जाए कि मां नहीं, फमा जालत जायल नहीं हुए, तो उन पे जवाल नहीं आया, बस हमेशा रहे तिलका ये, तो ये वो हमेशा दावाहम उनका पुकारना, तो वो हमेशा इसी तरह पुकारते रहे कि या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम जालिम थे। जैसे पीछे आपने सामरी के बारे में पढ़ा था, ला मिसास ला मिसास, और इसी तरह इंसान जो है जो जुल्म करता है, ज्यादती करता है, और फिर बाद में पछताता है कि अफसोस के मैंने ऐसा किया था, अफसोस के मैंने ऐसा किया था, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, तो वो यही जो है वो पुकारते रहेंगे, तो यही उनका शोरोगुल रहेगा। फरमाया हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, यहां तक कि हमने उनको बना दिया हसीदन, जड़ से कटी हुई खेती, खामिदीन बुझे हुए ढेर, यहां तक कि हमने उनको एक ऐसी खेती बनाया जो कि कटी हुई खेती थी, खामिदीन, खामिदीन जो है बिल्कुल जो है वो राख, बुझा हुआ ढेर राख का, तो असल में जो है वो हा स्वाद दाल जो है इसका मतलब होता है काटना, और हसीद कटी हुई खेती को कहते हैं, खामेदीन खा मीम दाल इसका मतलब होता है आग का बुझना, और राख के ढेर के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप देखें कि आग बुझ जाती है, उसके अंदर कोई भी अंगारा बचता नहीं, तो वो सारे कोयले क्या बन जाते हैं, राख का ढेर बन जाते हैं, तो इनके अंदर जिंदगी की कोई रौनक नहीं थी, कोई जिंदगी का शरारा बाकी नहीं था, तो ये सारे के सारे लोग जो थे वो बुझी हुई राख बन गए, वो ऐसी खेती बन गए जो कि कटी हुई खेती थी, यानी बिल्कुल ये लोग जो हैं ये तबाहो बर्बाद हो गए, अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया, और उनको मिटाने के लिए दो मिसालें दी हैं, या तो वो कटी हुई खेती बन गए, या फिर वो जो है बुझी हुई आग बन गए कि जिसके अंदर जो है वो कुछ भी जो है वो बाकी ना रहा। फिर आप देखिए कि यहां पर जो है आयत नंबर जो 16 है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आयत नंबर 16 से लेकर 29 तक ये बताते हैं कि दुनिया जो है ये किसी खिलंडे का खेल नहीं है, ये कोई थिएटर नहीं है, जैसे थोड़ी देर के लिए कोई वहां पे आके खेले और फिर रेत का घरोंदा बनाए, या बच्चे जैसे घर घर बनाना खेलते हैं फिर उसके बाद उसको खत्म करें और चले जाएं, या थिएटर में क्या होता है कि नकली तौर पर कुछ लोग किरदार अदा करते हैं उसके बाद वो खत्म हो जाता है, कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। दुनिया क्या है कि ये जो है अल्लाह ताला ने इसको एक मकसद के तहत पैदा किया है, और मकसद क्या है कि इम्तहान, और अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किए उनको जी हिस और जी शऊर और जिम्मेदार मखलूक बनाकर पैदा किया, उनके दरमियान हक और बातिल का इम्तहान है, हक और बातिल की कश्मकश है, और इसके बाद अल्लाह जो है वो इसका इम्तहान लेगा। फरमाया वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस आसमान और जमीन को नहीं पैदा किया, वमा खलकना और नहीं पैदा किया हमने असमा आसमान को, सीन मीम वॉइस का रूट है, हर जमीन से बुलंद चीज को कहते हैं, तो ये बादलों के लिए भी आता है, पौधों के लिए भी ये लफ्ज आता है, और आसमान के लिए भी आता है, वल अर्दा और जमीन को, वमा बैनहुमा और जो कुछ इनके दरमियान है, लाइबीन, लाम आइन बा जो है लाबा इसका मतलब होता है खेलना, और लाइब खेलने वाले को कहते हैं, और लाइबीन जमा है, और इसके मानी क्या है कि हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ भी इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं पैदा किया कि बस ऐसे ही हंसी मजाक खेलना, तो यहां पर जो है वो दुनिया की जो जिंदगी है इसकी हकीकत बताई जा रही है कि दुनिया के बनाने की बड़ी हिकमत है, आसमान और जमीन के पैदा करने में एक हिकमत है, वमा बैनहुमा लाइबीन, और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया, लव अरदना अगर हमारा इरादा होता, अन नत्ता खिजा लहवन, के हम जो है बनाए इसको लावन खेल खिलौना, ऐसे ही बेकार चीज लता खजना हो। लता खजना हो मिल न दुन्ना, तो अपने पास ही से कर लेते, तो बना लेते हम इसको अपने पास से इन कुन्ना फाइलिन, अगर हमें कुछ करना ही होता। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अगर हमें खेलना ही होता खिलौने बनाकर, तो हम खुद ही खेल लेते। कि अगर हमारा इरादा ये होता कि आसमान जमीन और इसके जो भी दरमियान चीजें बनाई हैं, बस खेल तमाशे के तौर पर इसको बनाया जाए, जैसे कि लोग समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर सारी कायनात बनाने के लिए और उसको सजाने की और उसके अंदर सारा कुछ पैदा करने की जरूरत नहीं थी। हम क्या करते, बस हम अपने पास से ही जो है इसको खिलौना बनाकर खेल लेते, फिर ये सारा एहतमाम करने की जरूरत नहीं थी। तो ये आयत नंबर 16 और 17 जो है ये बता रही है कि दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है, मानी क्या है, कि दुनिया की जिंदगी के बाद एक और जिंदगी होगी जिसमें लोगों का जो है, लोगों के अमलों के मुताबिक लोगों की जजा और सजा जो है वो उसको मिलने वाली है। आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इसको बताया है कि दुनिया की जिंदगी में हक और बातिल जो है इसमें कश्मकश जारी रहती है, और हक जो है ये मजबूत होता जाता है, फैलता जाता है, और जो बातिल है वो मिटता चला जाता है। बातिल ऐसे ही है जैसे कि झाग है, जैसे कि पानी पर बुलबुला। कहा कि बल नकजफू, बल्कि जो है हम खींच मारते हैं। फा जान फा जो है इसके मानी होते हैं फेंकना, डालना, पत्थर दूर फेंकना या दूर से फेंकना। रमी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है और कजफ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सूरत नूर में भी पढ़ेंगे कजफ, काजिफ, मकसूफ, तो वहां पे खास इस्तलाह है कि जो किसी पर इल्जाम लगाना, चोरी का इल्जाम नहीं, किसी पर जो है वो जिना के इल्जाम लगाने के लिए ये इस्तलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है, यानी किसी पर जिना के इल्जाम को फेंकना, मारना। तो यहाँ पे क्या है, बल नकजफू, बल्कि हम खींच मारते हैं बिल हक की हक को, तो हम हक जो है उसको खींच कर मारते हैं, अलल बातिली बातिल पर, तो हम बातिल पर हक की चोट लगाते हैं। फिर क्या होता है, फैयद मगोहू, इसका रूट है दाल मीम गैन, फिर वो जो चोट है उसका सर तोड़ देती है, तो वो जो चोट है वो बातिल का सर तोड़ देती है। फैयद मगोहू दाल मीम गैन के माने होते हैं दिमाग पर जरब लगाना। दमागा, किसी को इस तरह मारना, इस तरह जख्मी करना कि उसका भेजा निकल जाए, ऐसी चोट जिसका असर दिमाग तक पहुंचे। तो जैसे, और आपको पता है ना, दिमाग पर जो चोट होती है तो इंसान बेहोश हो जाता है, सेंसलेस होता है। तो कहा कि हम हक की चोट बातिल पर लगाते हैं जो उसका सर तोड़ देती है, फैजा हुआ जाहिक, और वो देखते देखते मिट जाता है। जा हा काफ, इसके मानी होते हैं, इसके अंदर जो है पाया जाता है कि जैसे वो बिल्कुल खत्म हो जाए, हिलाक हो जाए, भाग जाए, निकल जाए, जैसे झाग नहीं होती बिल्कुल बैठ जाती है, बुलबुला है बहुत फूला हुआ लगता है लेकिन बैठ जाता है फिर, तो मानी क्या है कि शिकस्त खाकर बातिल जो है वो भाग खड़ा होता है। वला कुमुल बैलू मिम्मा तसिफून, और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। वेल जो है ये जहन्नुम की एक वादी का नाम है, बाज कहते हैं कुएं का नाम है, और वेल का लफ्ज जो है ये तबाही और बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और तसेफून वो स्वाद फा वस बयान करना, और ये खूबी बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा वो स्वाद फा का लफ्ज जो है किसी की खामी बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा कि तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। तो वो क्या बातें बनाते थे अहले मक्का, कुफर और शिर्क करने वाले क्या कहते थे कि दुनिया जो है बस एक खेल तमाशा है, और वो कहते थे कि कि हम नहीं मानते कुरान को, उसको शायरी और जो है वो कहानत कहते, शायरी कहते, जादूगरी कहते। तो यहाँ पर जो है उसकी हकीकत जो है वो बताई जा रही है कि ये दुनिया की जिंदगी जो है ये हंसी खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है, बल्कि क्या है कि हक जो है वो बातिल पर अपनी चोट लगा रहा है, और बातिल जो है वो क्या है कि बातिल गायब हो रहा है, बातिल मिट रहा है। और ये जो हक और बातिल की कश्मकश है ये अजल से चल रही है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये खेल तमाशा नहीं है, बल्कि इंतहाई संजीदा बामकसद निजाम है। और जब भी हक और बातिल की कश्मकश हुई, हक हमेशा गालिब रहा। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये कश्मकश चल रही है और चलती रहेगी। तो हर दौर में एक नई कश्मकश जो है, एक नई शक्ल जो है, ये कश्मकश जन्म लेती है। तो यहाँ पे भी यही बात जो है वो बताई जा रही है। आयत नंबर 19 से लेकर 29 तक जो शिर्क करने वाले हैं उनकी तरदीद की जा रही है, क्योंकि अहले मक्का जो थे वो शिर्क करते थे। आज के दौर में भी लोग शिर्क करते हैं, और कौन शिर्क करते हैं, मुसलमानों में भी शिर्क करने वाले जो है वो पाए जाते हैं, और ये बड़ी ही बदकिस्मती है। तो यहाँ पे जो शिर्क करने वाले हैं, देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में शिर्क को रद्द किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है वो अल्लाह की है। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि आसमान और जमीन में जो मखलूक भी है, जो कुछ है, वो सब अल्लाह का है। तो अल्लाह की खालकियत, हाकमियत, मालकियत, रबूबियत जो है उसको जो है वो सामने लाया जा रहा है कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, उसी का है, यानी तुम्हारे माबूदों का नहीं है। तुम समझते हो ना कि तुम्हारे माबूदों का है, झूठे खुदाओं का है, उनका नहीं है। फमन इंदहू ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। फिर इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में तारुफ फरमाया है, और जो अल्लाह की मखलूक फरिश्ते हैं वो कैसे हैं, वमन इंदहू, और वो जो उसके करीब है। और अहले मक्का क्या करते थे कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो कहा और वो जो उसके आस पास है, वो जो उसके करीब है फरिश्ते, ला यस्तकबिरूना, वो सरकशी नहीं करते, फरिश्ते जो है वो अकड़ते नहीं है अन इबादत ही उसकी इबादत से, वला यस्तहसिरून और ना वो उकताते हैं। यस्तहसिरून जो है इसका रूट है हा सीन रा, इसके मानी होते हैं थकावट की वजह से मजीद काम करने से आजिज हो जाना। इसी से हसरत लफ्ज भी है कि इंसान जो है पछताता है। हसारा के मानी क्या होते हैं, किसी चीज को नंगा करके उसे पर्दा उठाना, और अलहासिर थके हुए आजिज और दरमांदा को कहते हैं। तो दरमांदगी ने उसके कवा को नंगा कर दिया। तो यस्तासिरून कि वो जो है वो थकते नहीं है, वो उकताहट का इजहार नहीं करते। तो फरिश्ते क्या करते हैं, मुस्तकिल अल्लाह की बंदगी करते रहते हैं, अल्लाह ताला के हर हुक्म की अताअत करते हैं, अल्लाह की इबादत से सरताबी नहीं करते और कभी थकते नहीं है। तो यहाँ पे मुशरिकीन के अकीदे को रद्द किया जा रहा है जो कहते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं और उनका अल्लाह के यहाँ बड़ा रुतबा और मकाम है, और इस तरह फरिश्ते जो हैं वो इनके बारे में अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे और इनकी बात जो है वो मनवा लेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। उनकी मजीद बात बताई जा रही है। पहली सिफत क्या है कि ला यस्तकबिरूना, कि वो इबादत जो है उसमें अकड़ते नहीं है, हर हुक्म मानते हैं। दूसरी बात, थकते नहीं है। तीसरी बात, युसब्बिहून अल्लैला वन्नहारा वला यफ्तुरून, दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं और दम नहीं लेते। यफ्तुरून जो है इसके माने भी जो है क्या है कि वो सुस्ती नहीं करते, वो जो अल्लाह ताला की अताअत कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ते नहीं है, कभी दम नहीं लेते। इसके मानी है कि फरिश्ते जो हैं ऐसी अल्लाह की मखलूक हैं कि मुस्तकिल अल्लाह की जो है वो इबादत कर रहे हैं, मुस्तकिल अल्लाह की अताअत कर रहे हैं। दिन रात अल्लाह की जो है वो तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की अतात करके भी और वैसे भी वो अल्लाह की तस्बीह जो है वो बयान करते रहते हैं। फिर आयत नंबर 21 में फरमाया अमित खजू आलिहतम मिनल अर्दी वहुम युनशिरून, क्या इन लोगों के बनाए हुए जमीनी खुदा हैं हम युनशिरून के उठा खड़ा करते हो। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जो और माबूद बना रखे हैं बिलखुसूस जमीन की चीजों में से, पहले तो फरिश्तों का जिक्र है जो आसमान में है, तो अब जमीन की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है क्योंकि वो लोग पत्थरों को जो है वो पत्थरों के खुदा बनाते थे, मादनियात के बुत बनाते थे। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अमित खजू जो इन्होंने बना रखे हैं आलिहतन माबूद मिनल अर्दी जमीन में से, यानी मट्टी के लकड़ी के पत्थर के मादनियात के जो इन्होंने खुदा बना रखे हैं हूं शुन शेरून, क्या वो जो है वो किसी को जिंदा करते हैं। नशरा के लफ्जी मानी होते हैं, नून शीन राइस का रूट है, इसके मानी होते हैं बेजान पड़ी हुई चीज को उठा खड़ा करना। और कुरान मजीद में बिलअमूम ये लफ्ज जो है जिंदगी बाद मौत के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि क्या इनके माबूद बेजान मादे में जिंदगी फूंक सकते हैं, क्या उनको जिंदगी दे सकते हैं। लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो दोनों का निजाम बिगड़ जाता। लौकाना फीहिमा, फीहिमा की जमीर आसमान और जमीन के लिए आई है कि अगर आसमान और जमीन में होते आलिहतन दूसरे माबूद इल्लल्लाहु अल्लाह के सिवा लफसदता, तो अलबत्ता जरूर फसाद पैदा हो जाता आसमान और जमीन में। ये असल में था लफसदतान था, नून तस्निया का गिर चुका है। तो जैसे एक जो कॉलेज है उसके दो प्रिंसिपल नहीं हो सकते, एक हुकूमत है या एक मुल्क है उसके दो बादशाह नहीं हो सकते, और एक जहाज जो है अगर उसको दो पायलट भैया को चलाना चाहे, एक कहे कि मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है ये 65 19 जो है वो 70 की बात है कि एक पाकिस्तान का जहाज था जिसमें दो पायलट थे और एक पायलट जो था उसका इंडिया से कुछ ताल्लुक था, तो वो उसने चाहा कि उस जहाज को इंडिया लेके जाए और पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरफ लाना चाहता था, तो वो जहाज क्रैश हो गया था। तो दो पायलट उसको दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जब लेके जाना चाहेंगे तो तबाही मचेगी ना। तो अगर क्योंकि दो खुदा हैं वो डिफरेंट ऑर्डर देंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आसमान और जमीन जो है इसका एक खुदा है, तो इसलिए कायनात का निजाम जो है इसके अंदर हम आंगी तनासुब तवाजुन और तावुन पाया जाता है, और अगर ऐसा ना होता तो फसाद पैदा हो जाता। फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, बस पाक है अल्लाह रब्बुल इर्श, बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बातें बना रहे हैं। तो यहाँ पे उनका जो शिर्क करना है उसको रद्द किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसी हकीकत है कि अल्लाह है जो इस कायनात का रब है और अकेला रब है और बाकी सब उसकी मखलूक है, बाकी सब उसके मोहताज हैं। तो जो कुफ्र करने वाले हैं, जो शिर्क करने वाले हैं, जो है अल्लाह ताला उन बातों से जो है वो पाक है। आयत नंबर 23 सूरत अल-अंबिया, ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है और सब जवाबदेह हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जो कुछ कर रहा है तो वो अपने काम के लिए जो है वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। उसकी अजमत ऐसी है अल्लाह की कि वो जो कुछ करता है कोई उस अजमत में उसका शरीक नहीं हो सकता, कोई उसके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई अल्लाह के से जो है वो सवाल नहीं पूछ सकता। वहुम युसअलून, लेकिन जो है वो जो इनके बाकी सारे लोग हैं जो कुफर करने हैं करने वाले हैं शिर्क करने वाले हैं तो इनसे जरूर बासपुर्स की जाएगी। फिर आयत नंबर 24 जो है यहाँ पर फरमाया जा रहा है अमिता खजू मिन दू नहीं आलेहा, क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं। कितनी अजीब बात है कि जब इस कायनात का एक ही रब है तो इन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे इलाह कैसे बना लिए? कुल हातु बुरहानकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो लाओ अपनी कोई दलील। बुरहान का लफ्ज जो है इसका रूट है बारा हानून, ये जो है वो दलील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये लफ्ज जो है यानी ऐसी दलील जिसे सुनने के बाद लोग जो हैं वो कुछ बोल भी ना सके। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला अपनी वाहदनियत पर अकली दलाइल दे रहे हैं। पीछे आपने पढ़ा ना, आसमान जमीन कोई रात दिन ये सारी चीजें जो है, यानी कायनात का निजाम एक अल्लाह ने संभाल रखा है, तो ये क्या है? अकली दलाइल है। अब नकली दलाइल पेश किए जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी किताबों में कहीं लिखा हुआ है? कुल हातु बुरहानकुम, तो लाओ कोई अगर दलील है तो पेश करो। हाजा जिक्रो मम माया व जिक्रो मन कबली बल अक्सर हम ला यालमून अल हक्का फहुम मोरिदून। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाजा जिक्रो मम माया, के ये जो तौहीद की बात है ये इस कुरान में मौजूद है। तो यहाँ पे जो पहला जिक्र है इससे मुराद जो है वो कुरान मजीद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये जो बात है कि एक ही अल्लाह है, ये बात जो है हाजा, ये बात जिक्रु ये कुरान के अंदर है। मम माया, मन जो माया मेरे साथ है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये फरमा रहे हैं कि ये जो कि अल्लाह एक है और बाकी माबूद जो है वो इस कायनात में जो है वो मालिक नहीं है, शराकत नहीं रखते अल्लाह के साथ। तो मेरे साथ जो लोग हैं और हमारे पास जो कुरान मजीद है तो उसमें ये बात मौजूद है। व जिक्रु, और दूसरा जो जिक्र है इससे मुराद साबिका कुतुब आसमानी है। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो दूसरी आसमानी किताबें हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं व जिक्रु और दूसरी आसमानी किताबों में मनकबली, जो मुझसे पहले गुजर चुकी, तो उसमें भी यही तालीम जो है वो दी गई। तो इस आयत में ये बताया जा रहा है कि ये कुरान अपने अंदर वो तालीम रखता है जो मुझको और मेरे साथ वालों को, मेरी उम्मत को दी गई, और इसमें वो तालीम है जो मुझसे पहले अंबिया पर नाजिल हुई। तो और पिछली किताबों में भी और कुरान में भी तालीम क्या दी गई थी? तौहीद की तालीम दी गई थी। किसी भी किताब में जो है वो शिर्क की तालीम नहीं दी गई थी। तो अगर तुम्हारी किताब मौजूद है जैसे, तो और जैसे तुरात है, इंजील है या कोई तुम्हारी किताब है, और उसमें तुम्हारे पास तौहीद के खिलाफ अगर कोई दलील है तो लाकर पेश करो। कुल हातु बुरहानकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील। ये भी किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, हाजा जिक्रु ममाया व जिक्रु मन कबली, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए जो है वो नसीहत थी। बल अक्सर हम ला यालमून अल हक्का फहुम मोरिदून, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं और इससे मुंह मोड़े हुए हैं। तो माने क्या है कि जहालत की बिना पर वो कुरान के दलाइल को जो है वो काबिले तवज्जो नहीं समझते और शिर्क करते हैं। तो अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, हक के बारे में जानते नहीं है और शिर्क करते हैं, एराज करते हैं। आयत नंबर 25 में फरमाया वमा अरसलना मिन कबले का मिन रसूलिन इल्ला नूही इलेही, हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है। इल्ला नूही इलेही, उसकी तरफ हमने यही वही की। क्या? अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम मेरी ही बंदगी करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फाबुदून, असल में नून के बाद या था हर्फ इल्लत जो गिर चुका है, तो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, बस तुम मेरी ही बंदगी करो। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुबहाना, ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है। अब आप देखिए कि अब यहां पर जो है पहले मक्का का जो मुशरिकाना अकीदा था उसको वाजे किया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। वलद जो है ये लफ्ज इस्म जिन्स है, ये वैसे तो बेटे को कहते हैं और ये औलाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अहले मक्का कहते थे कि फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो यहाँ पे इनका ये जो अकीदा है इसको रद्द किया जा रहा है, फरमाया। और वो कहते हैं इत्तखज़र रहमान वलदन, के रहमान औलाद रखता है, सुबहानहु सुबहान अल्लाह, कि जो कुछ ये कहते हैं अल्लाह इससे पाक है। बल इबाद, बल्कि फरिश्ते कौन है, वो तो अल्लाह के बंदे हैं। इबाद उनके मानी है कि वो तो अल्लाह की अताप करने वाले हैं, अल्लाह का कहना मानने वाले हैं, मुकरमून, इज्जत वाले हैं, उन्हें इज्जत दी गई है। या यसबिकूनहु बिलकौली, वो सबकत नहीं ले जाते, ला यसबिकूनहु, वो आगे नहीं बढ़ते इसके पास, बिलकौली किसी बात में, तो अल्लाह के हुजूर बढ़कर नहीं बोलते, वहुम बे अमरे ही या मलून, और बस वो उसके हुक्म पर अमल करते हैं, ना वो बातों में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ना वो अतात में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो तो अल्लाह के अतात गुजार बाइज्जत बंदे हैं, बस उन्हें कुर्ब का मकाम हासिल है कि वो अल्लाह के करीब है, लेकिन वो शर से पाक है। अल्लाह की बंदगी और फरमा बरदारी में, वफादारी में वो बेहतरीन है। वहुम बे अमरे ही या मलून या लमू मा बेन अईदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ उनके सामने है उससे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है इससे भी वो बाखबर है। वला यशफाउन, और वो किसी की सिफारिश नहीं करते, इल्ला लिमन इर्तदा, बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो। वहुम मिन खशियत ही मुशफिकून, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे फरिश्तों का कितना खूबसूरत तारुफ करवाया गया है। अब ये जो है, ये जो आयत है, आयत नंबर 28, इसमें जो है ये बात बताई जा रही है कि फरिश्ते जो है वो क्या करते हैं, कि जो कुछ फरिश्ते कर रहे हैं, जो कुछ फरिश्तों के आगे पीछे है, या वैसे यानी दुनिया में जो कुछ आगे पीछे है, हाजिर मुस्तकबिल, अल्लाह इन सारी बातों से खूब अच्छी तरह जो है वो वाकिफ है। और फरिश्ते भी गैब का इल्म नहीं रखते, किसके पास है गैब का इल्म भी, अल्लाह के पास है, वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनसे ओझल है। और फरिश्ते जो है वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, और अहले मक्का समझते थे कि वो अल्लाह के पास इनकी सिफारिश कर देंगे। कहा वला यशफाउन, वो सिफारिश नहीं कर सकते, इल्ला बजूज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो। और अल्लाह जो है वो गलत बातों को सुनना पसंद भी नहीं करता, अल्लाह पसंद ही नहीं करता गलत बातों को सुनना। और एक और बात हमें पता चली, वो क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम फरिश्तों के बारे में ये कैसे सोच लेते हो कि उनका खुदाई में हिस्सा है, उनका हाल तो ये है, वहुम मिन खशियत ही मुशफिकून, कि वो अल्लाह के खौफ से सहमे रहते हैं, डरते रहते हैं। अहले मक्का ये समझते थे कि फरिश्ते अल्लाह की औलाद हैं, और दूसरी बात वो ये समझते थे कि वो अल्लाह के पास इनकी सिफारिश कर देंगे। तो यहां पर अल्लाह ताला ने मुशरिकाना अकायद जो है उनको रद्द किया है। और आज के दौर में इंसान क्या समझता है, आज का मुसलमान क्या समझता है, वो अपने जैसे इंसानों के बारे में ये समझता है कि ये इंसान जो है वो अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करवा देंगे और ये हमें बख्शवा देंगे। तो नबियों और सालहीन के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये लोग, ये जो है ये हमें जो है वो बख्शवा देंगे। तो याद रखें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप बहुत से पैगम्बरों के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि जब अल्लाह का अजाब आया तो वो बाज पैगम्बर अपने बेटे को, बीवी को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए, तो कहा कि तुम उनके लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है वो हक है, और वो हक बात को सुनना जो है वो पसंद करता है। तो ये सारी आयात हमारे सामने ये बात रखती हैं कि हमें जो है सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, और ये मत सोचें कि अगर सिर्फ सैयद हैं या सिद्दीकी हैं या फलां से ताल्लुक रखते हैं तो हम बख्श दिए जाएंगे, या सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से, जब तक के अमल उसके मुताबिक जो है वो ना हो जाए, तो अपने अमलों को संवारना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने खानदान वालों को ये कहा था कि ए मेरी फुफो सफिया, ए मेरी बेटी फातिमा, ए आले अब्दुल मुत्तलिब वाले, यानी दुनिया में अगर आज कुछ चाहते हो मुझसे लेना तो ले लो, लेकिन आखिरत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। फिर फरमाया वमई यकुल मिनहुम इन्नी इलाहु मिन दूनिही, और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूँ, फजालिका नजजी ही जहन्नम, तो उसे हम जहन्नम की सजा देंगे। कजालिका नजजी ज़ालिमीन, हमारे यहाँ जालिमों का यही बदला है। तो अब आप देख लें कि हमारा जो सूरत अंबिया का हमारा सबक था आज का, आयत नंबर 1 से लेकर 29 तक, इसमें जो है वो अल्लाह की बंदगी की दावत दी गई है और शिर्क जो है इसको रद्द किया गया है। कुरान पर ईमान लाने की दावत दी गई है। कुरान क्या कहता है कि हम अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढाल लें, हम अल्लाह के, अल्लाह ने जो मेरे और आप के नाम खत लिखा है, आप भी हकीर मैं भी हकीर, आजिज लोग, हमारे नाम इतने बड़े बादशाह ने इतना खूबसूरत खत भेजा और आप जो हैं उस खत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हम इस खत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुरान मजीद से दोस्ती करनी चाहिए, इसको अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना चाहिए, इससे अपने मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। और जितने भी सलफ सालहीन गुजरे हैं उन्होंने कुरान के साथ जो है वो दोस्ती की थी और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक जो है वो ढाला था, और वो बड़े ही नेक लोग थे। और आज के इस जमाने में मुझे और आपको जो है वो ईमान लाना है, अमले सवाले करना है और अपनी इस गुजरती हुई जिंदगी में जो है वो अपने मकसद जिंदगी को याद रखना है। और मेरा और आपका मकसद जिंदगी क्या है कि मैं और आप जो है वो नेक और मुत्तकी बन जाएं, मैं और आप तौहीद परस्त बन जाएं, मैं और आप अपनी जिंदगी से शिर्क को निकाल दें। फरिश्ते अल्लाह अल्लाह की अताअत करते हुए थकते नहीं हैं, अल्लाह के आगे बढ़-बढ़ कर बातें नहीं करते, एक अल्लाह की बंदगी करते हैं। और आप देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह क्या कहता है और हम क्या करते हैं, हम कहां पर खड़े हैं। तो हमें जो है वो उन लोगों में शामिल नहीं होना जो कहेंगे कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। तो आइए हम मौजूदा जो जिंदगी है इसको संजीदगी के साथ जो है गुजारें और समझें कि दुनिया की जिंदगी जो है ये एक इम्तहान गाह है, मैं कैंडिडेट हूं, अल्लाह मेरा एग्जामिनर है, और क्या बनेगी और क्या होगा जो है अगर मेरी जिंदगी यूं ही गुजर गई। और आप देखें कि जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, लम्हा लम्हा करके मेरी और आपकी जिंदगी के दिन जो है वो कम हो रहे हैं, और जिसकी जिंदगी के दिन कम होते जाएं, जिसकी उम्र जो है वो खत्म होती जाए, जिसकी जवानी बुढ़ापे में ढलती जाए, वो कभी खुश नहीं होता, वो कभी खुशियां नहीं मनाता, वो कभी केक नहीं काटता, वो कभी जो है वो लंबी तान कर जो है वो नहीं सोता, वो सोचता है कि अल्लाह के पास जाने का वक्त आने वाला है और अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। इक्तरब लिन्नासि हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। तो जो इब्तदाई आयात थी बीच में जो है और एंड पे एक ही बात है और वो ये कि लोगों मौत का वक्त करीब आ गया है और तुम जो हो वो गाफिल हो और तुम गफलत में हो। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।